से हमारे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। शख्स के साथ हमारा काफी दिनों से वास्ता, इसलिए है कि हमारा इसके जरिए मुलाकात हासिल की गई। तुमसे इस चीज के लिए अस्सलाम वालेकुम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हम इस वतन में आए अपनी भलाई चाहने के लिए आए हैं, और इसलिए हमें बड़ी खुशी है। कि हमारे वतन में हजारों करोड़ों हमारे मुसलमान हिंदू क्या सब बदरुए इस आलम के खंडहर बनों में फिरती चिल्लाती हैं, जिनकी कोई भी आस फरियाद सुनने के काबिल नहीं, क्योंकि जेल में हजारों कैदी होते हैं। रिहाई किसी किसी की होती है, वक्त पर सबकी हो जाती है। इसलिए हमारा वक्त जल्दी आ गया, हमारी जल्दी रिहाई हुई, और अब हम अपने असली शरीर की इबादत करने के बावजूद घर में किया जाएगा, तब जाकर हमारी निजात हो जाएगी। समझ गए? हमारी तमन्ना है 10 जन्म इस आलम में दोबारा आना पड़ेगा।
10 जन्म
और
10 जन्म के बाद आपकी निजात मिलेगी।
बिल्कुल,
एक जन्म में नहीं मिलेगा।
नहीं,
ये जो आप अभी ये रोज कितनी करोड़ फिरती है
हमारे इस वतन में, हजारों से भी करोड़ों जितने तुम लोग इंसान हो, तुम्हारे से कई गुने ज्यादा हमारी रूह फिरती है। तुम्हारी इस चीज को यकीन दिलाने के लिए हम लोग इस बात का तुमको अमल कराएं तो तुम्हें इल्म हो जाए कि कितनी रूहें हैं। लेकिन अभी तुम उनको देखने की कोशिश करो तो इन आंखों से तुम लोग देख नहीं सकते।
ये तो ठीक है, हम देख नहीं सकते। वैसे वो लोग ये जो आप लोग हैं, आपके लिए वैसे शहर वगैरह हैं या ऐसे?
हमारे लिए खंडर,
खंडर
वन जंगल एकांत, हमारी अपनी रूह आपस में मिल सकती है। लेकिन जिस तरह एक शख्स सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकाल दिया जाए, उसको कपड़ा तक न दिया जाए, उसको कितनी परेशानी होगी। ऐसी बिना शरीर के हम थोड़ी परेशानी है। खैर, आप इस वक्त मेरे से क्या सवाल करना चाहते
हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, बाहर रहते हो, खाना वगैरह कैसे खाते हो?
हमारा खाना खुराक हमारा किसी भी जानवर से किसी के जरिए खुराक ले सकते हैं। हमारा खुराक खून, हमारा खुराक मलीच निष्ठा हड्डियाँ। दरअसल ये कोई भी प्रेत एक ऐसा हो सकता है जो गंदगी से मरा हो, जिसने बुरे विकार किए होते हैं, वो इस आश्रम में आकर मरता है और उसी की ये बदरू परेशान होकर किसी के जरिए जैसे एक रोशनाई होती है, उसको चूसने के लिए तुम उसके ऊपर कागज लगाओ, साहेब चूस लगाओ, वो चूस लेता है। ऐसी दूसरे शरीर के ऊपर हम अपनी खुराक सूक्ष्म शरीर के जरिए ले लेते हैं। इसलिए आज से हम काफी समय से पहले, जिस वक्त इस बच्चे का मकाम गांव खेड़ा मुगला है, उसी जगह हम इमाम 5 वक्त की नमाज अदा कराते थे, उसी जगह हम दावे तवीद का काम करते थे, और हम लोग किसी भी मुर्शिद को नहीं बनाया। अलबत्ता हमने 5 वक्त की नमाज अदा कराई। पहली नमाज हमारी फजल की है, दूसरी नमाज हमारी जोहर, तीसरी नमाज हमारी असर, चौथी नमाज हमारी उसके बाद में ईशा मगरिब ईशा, ये 5 नमाजें हुई और ताजे तवीद किए, क्योंकि हम पीर पीर सुलेमान, जिस तरह तुम लोगों में कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, हम लोग पीर मजहब से, पीर जी हमारे खानदान जात पीर जी से नजर रखते हैं। पीर जी हमारा असली नाम पीर जी सुलेमान था, और जितने भी लोग जितने भी औरतें हैं जितने भी हमारे पास आते अपने बच्चों के लिए तागा तवीद कराने के लिए, हम लोग तागा तवीद करते थे और उस चीज का हम लोग पैसा लेते थे। इसलिए खुदावन करीम का हुक्म है कि जो बदरूर से काम लेगा आखिर वक्त जिस वक्त उसका अंतकाल हो वो बदरूर में मिला दिया जाता है और परेत जिसको बदरूर जो बुरी दुनिया होती है उनमें मिला दिया जाता है। ऐसे हम जो एक दिन हम अपने अंतकाल हुए और बदरूर यानी हम परेत जुनून में मिला दिए गए। फिर हमें बताया गया कि अरे सुलेमान जिस वक्त उन शख्स के साथ में तेरा 1000 साल उसका 10वां जन्म पूरा हो जाएगा तब उसके साथ लगकर ऐसे ऐसे खुदावन करीम जो संत ईश्वर सिंह है उनके पास तेरा आखिरी वक्त होगा और उसी से जरिए तेरी भलाई होगी।
ये किसने आपको बताया?
खुदावन करीम जो कि रब्बुल आलमीन है उसने हमें धर्म राह इज़राइल फरिश्ता के या हमें फरमाया है। जिस वक्त किसी को सलाह दी जाती है उसको सुना भी जाता है कि फलां फलां वक्त तू छुटेगा
उस टाइम पर बताया था सारा कुछ।
बिल्कुल
जब आप हमें छोड़कर उस टाइम पर गए जो गए थे तो उधर जाकर आपको ये सारा सुना
है बताया है।
उस टाइम पर आपकी कितनी उम्र थी जब
उम्र? इस वक्त हम इस वक्त 70 साल के
70 साल के
जुड़े थे
जुड़े थे। और जब उधर गए आपको सिर्फ इसीलिए देख का जन्म मिला के और उस टाइम के बाद अभी कितने वर्ष हो गए आपको?
1000 साल
1000 वर्ष हो गए।
अशोक राजा हुआ
वो देखा
सिद्धार्थ हुआ
सब
गौतम बुद्ध चला है
और
नानक से पहले हुए हैं। ये बड़े बड़े हमारा मुसलमान लीडर नादिर शाह खलीफा जो हमारा हुआ एक नादिर शाह ने हमला किया एक नादिर शाह खलीफा था इसलिए। लेकिन हम लोग अपना मुसलमान जानों में थे हम लोग किसी मजहब को मानने से शरीयत से हमें नहीं रोका शरीयत रोकती है हम इस्लाम के पाबंद इस्लाम को मानते हैं और इसलिए आज हम परेशान हैं कि किसी भी किस्म से हम लोग इस लंबे अरसे से जो हमारी यही परेशान है आप उसको रावण करीम जो वलीअल्लाह है उनके जरिए आज हमें नजात मिली और आज हम अपनी असलियत जिस चीज की तलाश में इतने अरसे से घूमते हैं उस मरतबे को पहुंच गए हैं। बिल्कुल क्योंकि हमारा कुरान शरीफ फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी कुरान शरीफ में हजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया का रब है सब के ऊपर रहमत देने वाला है। अरे बंदे तो उसकी रहमत का सदका है अगर उसकी तेरे ऊपर रहमत न हो तो तू इस आलम में जीना भी नहीं रह सकता।
इसने
हमारे ऊपर आज से 1000 साल के करीब उससे कुछ हमारा लेना देना है उसके वजूहत में हम उसके साथ लगे हैं। वो कई बात लाएंगे गुप्त है जो हम यहाँ नहीं बता सकते।
जब ये गुरु नानक
के टाइम पर हुए तो उसने आपकी मुक्ति नहीं करी। जब हमारा फैसला इस मकाम पे था तो गुरु नानक साहब के मकाम पर कैसे हो सकता
था?
हम लोग समझते हैं मक्का मदीना काबा शरीफ में हज ज़ियारत करने जाते हैं गुरु नानक भी 5 भौतिक चोला लेकर आलम में आया। गुरु नानक खुदा था खुदा ये भी खुदा है दोनों बराबर है कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो चीज गुजर जाती है उसकी कदर ज्यादा होती है जो चीज शाम में उसकी कदर लोग नहीं करते। गुरु नानक वो था एक महात्मा का रूप एक वली अल्लाह का रूप लेकर ऐसे ही आया था दुनिया ने उसको भी बुरा भला कहा। आज हम लोग परेशान होते हैं कि गुरु नानक कहाँ गुरु नानक कहाँ गुरु नानक तो यूं है दूसरा गुरु नानक और जो है वो गए अपना वली अल्लाह अपना खुदावन ये महात्मा ये सरबंद है ये भी गुरु नानक का दूसरा रूप लिए हुए इस आलम के अंदर आए हैं। समझ गए तो मैं स्वर्ग आए کہ ان کی خدمت میں یقین کرو اور پورا ان پر عقیدہ بناؤ کہ خدا وند کریم جو اصلیت میں دوسری شکل خدا کی ہے تو وہ یہی ہے، اور اس لیے تمہیں میرا حوالہ دے کر یقین ہونا چاہیے کہ میں ایک پریشان شخص کے ساتھ میں ادا کافی عرصے سے لگا ہوا ہوں، آج میری مزاد کی ہے، جو میری مزاد تو وہ گپت روپ سے بھی کر سکتے تھے، لیکن تم لوگوں کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مہاپرش ولی اللہ آخر تمہیں کوئی کرشمہ دکھاتے ہیں جس سے دنیا سیدھے رستے پر چلتی رہے. آپ تو سمجھدار ہیں حضرت، آپ لوگ اپنے من کو ایکاگر یقین اور اس چیز کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں کہ جو بھی آپ اپنے اصلیت پر ہیں، جس کی خدمت میں آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بھی اس چیز میں پریشان نہیں آئے گی، نہ اس عالم میں نہ آگے آنے والے وقت میں جو مرنے کے بعد آنے والا ہے، اس میں بھی تمہاری ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور تمہیں ہر جگہ سے جو روز قیامت کا دن ہوتا ہے، جو فیصلہ حساب کتاب ہوتا ہے، اس میں تمہارا درگاہ وکیل بن کر تمہاری حفاظت کرے گا. تمہارا بشرط انسانی شریف دوبارہ آنا ہوگا، لیکن تم کبھی بھی دوزخ میں جانے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ تم با مرشد ہو. جو با مرشد شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز دوزخ میں نہیں لے جا
سکتی، مرشد نہیں
اس کو اور خود کی تمہاری جنیا ہے ان میں پوکھنا پڑتا ہے. مرشد بنا ہوا شخص کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا.
ایسے میں کوئی عالم سے غلطی کرے انسان
اپنے جب ہو اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا انسانی شریر میں مل سکتی ہے، لیکن تم کسی غیر جگہ نہیں جا سکتے. مرشد پھر بھی تمہیں اپنا بنا کر نکال لے گا. مرشد کا بنانا کیا ہوا؟ ماحول ہوا جو مرشد میں پار نہیں کرنا. مرشد ہمیشہ پار کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو ہمیشہ پار کرتی ہے، پار کرنا چاہتی. بچہ بے شک اس کا بھلائی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میں سمجھتی ہے تو میں اس کو ضرور پار کرنا ہے. سو جو اصلی ولی اللہ مرشد ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، جو اس کا مریض ہے وہ اس کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے، البتہ مریض اپنے مرشد کا بھلا چاہے یا نہ چاہے. خیر ہمارے بات سنیے، میرے لیے تو بات اتنی کہنے کی ہے کہ میں نے جو آپ کے سنگ اصلی لہر کی ہے کہ جس وقت تک ہم لوگوں کا فائدہ ہونا تھا، جس کے ذریعے ہماری یہ مزاق ہونی تھی، کسی کے ذریعے ہونی تھی، اس کے علاوہ اس کو کسی بھی کرنے کی، کوئی بھی ہماری مزاق کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا.
ایک بات ہے جو گرو نانک صاحب کا پچھلی جنم ساکھی کا بدن ہے کہ ہم نے بھوتوں کے روپ میں 83 جامے دھارنے ہیں، وہ تم کو معلوم ہے کتنی
دھارنے؟ ہم نے بتا دیا کہ گرو نانک یہی ہے. ابھی دیکھو گرو نانک نے 84 تمہارے سامنے بتائے. 84 تم جانتے ہو؟
ہاں 10 گرو روپ میں
وہ ٹھیک ہے،
اس میں 10 گرو روپ سے 70 جانے
74 ہیں. 74 کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہیں، اور اس عالم میں علیحدہ علیحدہ ایک سنت مستو والا اتر سنگھ، ان میں ایک گرو ہے سنت منگ سنگھ، سنت ایشر سنگھ، سنت ریلو صاحب کے جتنے بھی ہیں، ابھی کم سے کم درمیانہ میل سے تمہارے آگے انسانی شروع میں آپ دیکھو کہ تم لوگ جس کو اصلی ولی اللہ گرو نانک کی اصلی نورانی جوت ہے، وہ ابھی کم سے کم عرصہ 60-50 کا درمیانہ ہے، 60-50 کے اندر اور آئیں گے. سمجھ گیا؟ یہ ایک نہیں ہے کہ تمہارا ایک ہی ہے. عالم میں کتنے ہوتے ہیں لیکن اصلی مہاتما گنے جاتے ہیں، جن کو خداوند کریم اصلی اپنی درگاہ سے بھیجتا ہے، وہ ہے جس کو کوئی کمی نہیں. مولانا مولانا یوسف صاحب نظام الدین جو انتقال کر گئے، شیخ الحدیث مولانا سہارنپور والا، یہ لوگ مولانا ضرور ہیں پر حضرت اصلی مقاموں کو پہنچنے کی طاقت ان میں نہیں. ایک چیز جو منزل شریعت سے لے کر منزل آخر معرفت تک پہنچا دیتی ہے وہ مرشد کے ذریعے مل سکتی ہے. مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, سب خداوند کریم کی ایک نورانی جوت ہے اور اس کو ملنے کے لیے ایک مرشد کی ضرورت ہے. مرشد کی ضرورت کے بعد جب مرشد اس کو جیسے خود وہ خدا سے ملا ہوتا ہے تو وہ اپنے مرید کو بھی ملا دیتا ہے. پر کب جب وہ مرشد ملا ہو تبھی ملا سکتا ہے, اس لیے ملے ہوئے سے ملنا ہی سب سے اچھی بات ہے. مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسلمان پاک نماز ادا کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ نماز ان کی نماز نہیں ایک فرض ہے. جو خدا کے مسجد میں جا کر پانچ وقت کی نماز ادا کر رہی کہ میں نماز ادا کرتا ہوں لیکن دل اس کا کہیں نہ نماز کہیں نہ تو خدا کریم میں سے نماز سے خوش نہیں ہوتا. نماز اصل وہ ہے جس سے انسان کا من دل ایک ہو کر کسی کو خبر تک نہ ہو وہ اصل نماز ہے. یہ نماز دکھاؤں کی خیر آپ اپنا اگلی بات سنائیے. آپ اپنا سوالات
نہیں
جائیں گے آگے جائیں گے اگلے جنم
میں
یہ بچہ اس شخص جس کے ذریعے ہمیں یہ ضرور جائے گا جائے گا کیونکہ تین سال کے بعد اس کی اصلی مقدس جو جگہ ہے جو اصلی مقدس جس چیز کو ہم چاہتے تھے کہ جس چیز کے اوپر ہم ہماری تمنا تھی کہ ہم اس کے ساتھ سات سال تک رہے اب اس شخص کو دنیاوی چیز سے نکال کر ایک خداوند کریم کے قریب پہنچا دیا. اب آگے 30 سال کے بعد اسی مندر میں مل جائے گا جس مندر کو ملنے کے لیے بڑے بڑے رشتے میں مل جاتی ہے. حضرت وہ ملتی ہے مٹی سے, تپسیا کرنے سے نہیں ملتی.
تپسیا کرنے سے
مٹی سے بڑے بڑے کام انسان سبھی کر سکتا ہے اگر اپنا طاقت سے لگائے اور اپنا زور بنائے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فرض کرو کوئی لوہا تم آسمان میں ایک ذرہ بھی لا سکتے وہی لوہا ہزاروں میں ملتا ہے. یہ مٹی ہے نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے ہر ایک چیز ہم جانتے ہیں, ہم خداوند کریم صاحب کی اور ہمارا پتہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے کیا چیز مانگنی ہے. راز نہیں مانگنا, دولت نہیں مانگنی, مانگنا ہے یہ کہ خدا میں مل کر خدا ہی بن جائے. نہ کوئی رشتہ ہے یا نہ ہو, نہ میں نہ تو کچھ بھی میرا, صرف جیسے تھا ویسا ہی ہو جائے.
ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں,
فرمائیے.
کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے وقت اخیر جدھر اس کی تمنا ہوئے ادھر اس کا جنم ہوتا ہے.
بالکل.
تو اگر اس نے سارے کرم کیا ہے تو اس کا کیا فل ملا؟
دیکھو کہ انسان جس وقت اس عالم کے اندر آتا ہے اچھے کرم کرتا ہے, ٹھیک ہے
جی,
اور برے بھی کرتا ہے. تو مرنے کے باوجود اس کو فرض کرو کسی بھی جیل میں ڈال دیا گیا, کتے کی جیل میں ڈال دیا گیا, فرض کرو گائے کی دوڑ کی, تو حضرت کئی کئی کتے ایسے ہیں جن کو کافی ایسی لوگ ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں جتنی کی ہماری تمہاری نہیں کر سکتے, کرتے ہیں نہیں کرتے. اس لیے اس کا پھل اس کو مل جاتا ہے, پر نجات نہیں مل سکتی. نجات مرشد سے ملے گی, مرشد ہونے سے لگے گا.
مرشد تو ہے, مرشد ہے. مہاراج جی نے بتایا ہے کہ جب بہت اصل لگتا ہے جتنے اس کی جان ہوتا ہے مرنے کے ٹائم پر اتنے اس کا جنم ہوتا ہے.
میں اس وقت تمہاری سمرتھا تم سے دور ہے, اس وقت مرشد کا قبضہ ہے. تمہارا مرشد تمہارا اس خیالات کو سیدھا راستہ بنا دے گا, یہی تو مرشد کا کام ہے. تمہارا ان شاء اللہ تمہیں مرشد یاد آئے گا اور کچھ نہیں آ سکتا. یہ اصلیت ہے, یہ اصلیت, کیونکہ اصلی چیز اس کو یاد کرتی ہے جب کوئی مصیبت ہوتی ہے.
بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کو یاد کرنے کی بجائے نہیں
کرتا. آخر وقت مرشد تمہارے اس خیالات اپنے اوپر لے لے گا اور تم کو آگے آنے والے وقت میں انسانی جامع مل جائے گا.
समझ गए उसका यकीन हम दिलाते
हैं।
जो हमको बताया था ना मुर्शिद ने भाई तुम पिछले जन्म में हमारे यहाँ पर थे और हमारा पूरा पता बता दिया था तो वो हमको हम छोड़ते देंगे।
तुम जल के मरे तुम लोग मंडी थे
मंडी कहाँ
और अपने आप को तुम लोग जिस तरह में समझते दूध तुम्हारा मरतरा उस जन्म से ही जन्म में ज्यादा
पता नहीं और
ये है जो शख्स की चीज को भी हासिल करना चाहता है तो उसको मुर्शिद जानता है तो क्या इसको करना है मैंने कैसे नहीं करना। इंसान की ताकत उसको हासिल करने के लिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो खुद ही करना चाहता है जो वो कुछ करे वो सब अपनी देख भाल कर करता है लेकिन उसके करने का तरीका एक अलग तरह का होता है जिसको इंसान नहीं जान सकता। खैर ये इधर रहा था थोड़ा
सुनो ज्यादा विश्वास रखता है
नहीं वो ठीक है उनका जन्म ऐसी है आप हमारे जन्म से अंदाजा लगा सकते हैं जैसे बदली को एक जमीन दे सकता है ये ठीक है। तो जितने भी बिछड़े हुए साथी हैं सब ऐसे ही है ये शख्स भी ऐसे ही है जिसके ऊपर हम बोलते हैं इनकी भी पहले जमीन ऐसी तपस्या गली हुई है ये नहीं देखो इसी नए सुबह से शुरू हो रहे हैं काफी जन्मों से इन वन वनों के साथ तपस्या करी हुई है और तपस्या का असली फल मजबूत मजबूत होता होता इतने दिनों में होगा तभी मेरा इसके साथ लगा हुआ और जो कुछ लिखा लेना देना था वो 6 महीने इसके साथ रहकर पूरा कर दिया।
जब इंसान मरता है तो उस टाइम पर जब लड़ने के लिए आते हैं यमृत आते हैं या तो कैसे ले जाते हैं
सूक्ष्म शरीर के जल में ले जाते हैं
तो उसको तकलीफ
जो इंसान जुल्म है जिसने मुर्शिद नहीं बनाया है उसकी असलियत को वो ऐसे जानता जैसे तुम्हें कोई चीज आकर अचानक दबा ले तुम बोल नहीं सकते। ख्वाब तुम्हें कभी कभी आता है तुमको कोई चीज या शेर तुम्हें दबा ले तुम बोल नहीं सकते न तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं उस वक्त तुम कितने घबराते हो मुझे जवाब दो उससे 1000 गुना ज्यादा इसमें तकलीफ होती है और बोल नहीं सकते ये तो असलियत तो मुर्शिद वाले तो तुम्हारी असलियत ये है कि तुम्हें कोई मुर्शिद में अपने में जाना कि जब तुमको मेरे आग लड़ू तुमको उसके दिए हुए असली देव जिसको तुम लोग बोलते हो देव वो तुम्हारी असलियत को लगा कर और दोबारा तुम इस आलम में फिर भेज देगा
ये इंसान
इंशाल्लाह इंसान जन्म आप तुम इस जन्म में हो अगले जन्म में तुम दोबारा हो ऐसे करके जब तक तुम्हारी असली रूहानी पूरी नहीं हो जाएगी जिस वक्त तक तुम असली मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे जब तक तुम्हारा इस आलम के अंदर जन्म होता ही रहेगा। खैर ये सुनिए इन बातों को आप लोग समझिए कि मज़ाद हासिल करने के लिए अपना दिन भर दिन की इबादत करो और जो शख्स मैं मानता हूँ कि इस वक्त मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए इस जन्म में अगले जन्म में तुम्हें अलहदा को शादी शुदा का अपना जो असली तुम्हारा चीज है वो अगले जन्म में तुम इस जितनी भी दुनियावी चीज इसको तुम्हें अलहदा होना होगा उससे आगे दुनिया को खुदावंद करने की ख्वाहिश के अलावा तुम्हें दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी तब जाकर ये बातें बन सकती है। खैर इन बातों को आप छोड़िए अब हमारी असलियत को आप इन समझ ही गए हैं दरअसल दुनिया के अंदर जितने जितने लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी राय रोजी खाना पीना करके चले जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला पुराने पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया और मेरे बंदो जिस वक्त तुम अपनी माँ के पेट में थे तो मैंने तुम्हारी रोजी का वादा किया मैंने रोजे पुजाई जब तुम इस आलम में आए तो तब भी मैंने तुम्हारे दांत निकाल दी तुम्हारे को दूसरी रोजी दी मेरे बंदे मैं तुम्हें इस आलम में इबादत करने के लिए भेजा कि मेरी इबादत करो कि रोजी कमाने के लिए, क्योंकि रोजी कमाने या रोजी का देना तुम्हारा तुम्हारे बस की बात नहीं। जालिम मैं हूँ, रोजी का देने वाला मैं हूँ।
रोजी का देने वाला ठीक है, लेकिन जब काम न करेंगे तो फिर कैसे
सामने है रावन करीम जिस वक्त पूरी तरीके से उसको याद करते हैं, वली अल्लाह जिस वक्त पूरे तरीके से उसकी बात करते हैं, तो तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे सामने में सार काम है। इतनी रोजियों का यहाँ पेट भरता है बनता है। तुम लोग रोजी को अपना इंसानी शरीर समझ कर रोजी को सब कुछ समझ कर खुदा से मुमकिन हो जाते हो। उन बंदों से अल्लाह तआला ने फरमाया कि रोजी को खुदा ना समझो, मेरी भी इबादत करो, अपना काम करो, लेकिन अपना पूरा वक्त उसमें मैं गुजारो, अलबत्त मेरी इबादत करो।
इबादत करते अपने घर में बच्चे
ठीक है, रोजी करते हैं। बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना उसमें गफलत न हो जाओ कि मुझे भूलो ना। काम करो, काम कर लो, तुम्हारा फर्ज देने वाला मैं हूँ।
ये तो है, ये तो ठीक बात है, ये ठीक बात है। अमेरिका में बहुत से आदमी अगर सुनेंगे आपकी महाराज का नाम बड़ा हो रहा है, कोई दूसरे ऐसा कवाली खुदा के नाम की जिसमें महाराज जी का नाम हो, ताकि दुनिया सुनकर इनके ऊपर विश्वास करे। बहुत दूर मिलता
है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यकीन दिलाने वाला खुद खुदा है, और यकीन दिलाने की ताकत उसमें खुद है। हम लोग अपना जन्म लेकर आए हैं, ये बड़ी बात नहीं। खुदा वन करीम की इंसान बंदे वरी अल्लाह चाहे तो इस आलम को पलट दे, खुदा की कसम कल युग से सब युग कर सकते हैं। ये तो बात ही कुछ नहीं, पर तुम लोगों को दिखाने के लिए इतना ही बड़ा करिश्मा बहुत है, समझ गए।
नहीं बात ये ना, हम अफ्रीका में जब जाएंगे हम लोग सुनाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से सब आदमी को विश्वास हो कि हमारा इतनी ताकत है। कई ऐसे शख्स हैं वो इस बात को नहीं मानते,
कहते
गुरुद्वारा
क्या होता है,
महाराज जी ने ऐसी ताकत नहीं है, उन्होंने जैसे इंसान नहीं है, ऐसे बहुत से आदमी होते हैं।
अच्छा,
उनके दिल से ये बात निकालने के लिए ऐसी बात हो ताकि उनको यकीन हो या विश्वास आ जाए।
यकीन विश्वास ये सब तुम्हारी ये बात से नहीं बन सकता, ये यकीन और विश्वास देने वाला खुद खुदा है, और खुदा उसको यकीन दिलाता है जिसके पिछले जन्म की अच्छी तपस्या करी होती है। दूसरे की ताकत नहीं है कि वो करा सके, समझ गए। ये तुम अपना फायदा उठाओ, जिसको खुदावन करीम चाहेगा अपनी तरफ खींच लेगा। अपना असली वक्त तुम इबादत में गुजारो, और मेरी यही तुम्हारे से उम्मीद है कि तुम लोग अपना असली आने वाली जिंदगी रोज़े क़यामत के दिन तुम अपना ऐश और आराम से इस आलम से चले जाओ, और आने वाली जिंदगी में फिर इबादत करो और कुछ समय तक अपनी निजात हासिल करो। ठीक है,
ठीक है।
संसार झूठ की बनाई हुई एक झूठा एक धर्म बनाया हुआ है, इसके अंदर गफलत में पड़े हुए लोग उस आलम में आए हुए लोग अपने साहब दौलत साहब मकान सब चीजों को अपना मान मान कर लड़ लड़ कर और मर मर कर चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं उसकी बात करूं और उसके साथ मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। इतने आलम में कोई कोई मिलता है जिसको खुदावन चाहता है वो बन सकता है, तुम्हारे या मेरे कहने से नहीं बन सकता। अच्छा तो अब मेरी तरफ से इजाजत दे दो, जाना चाहते हैं हम लोगों ने चंद अल्फाज सुना कर चले जाएंगे। तू तक लाल आ जा, दिल ना लगे इत तक ना जा गुरु नानक आ जा दुनिया पुकारती जुल्म है बड़ा दूर करा जा सज्जन थको आते गुरु नानक पंथ गा कबीरा कृष्णा करके दाता पार करा कृष्णाए खुदा दिखाया नानक शातुर विदार दे दे ख्वाहिश है तेरे दीदार की त्रिपता के लाल आजा त्रिपता के लाल आजा तेरे बिन मेरा दिल मान गे त्रिपता के लाल आजा। ये चंद लाइनें हम अपनी तरफ से जाते तरफ तुम्हें सुनाई है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
पहले हमने बहुत अच्छे कृष्ण और कवल में सुनाई, अब जी नहीं चाहता, अब ये जी चाहता है कि अब फैसला हो गया एक महीना शख्स के साथ में फिर मजाक हासिल होकर ऐश करेंगे।
एक बात और कीजिए कि गजल ऐसा हो खुदा के घर की,
हमारे क्या सुनना चाहते हैं आप
खुदा के घर की
सुनना चाहते हैं?
बिल्कुल।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरातल मुस्तकी सरातल अजीनाली। ये हमारी आयत जो नमाज से पढ़ी जाती पहले वो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी है, और इससे अलहदा हमारी रकातें होती है जो कि फजर की में दो फर्ज पढ़े जाते हैं, उसके बाद में जहर में चार, उसके बाद में आपका असर, असर में चार, मगरिब में तीन, ईशा में आठ। समझ गए आप? इतनी बात कहकर फिर कभी हमारे से गुफ्तगू करना।
एक मिनट और ठहरिए,
मेरी बहन
है,
मेरी
अफ्रीका में रहते हैं, उन्होंने कुछ ठिकाना ठीक नहीं है, जो सरकार है उसे निकालती है, कुछ करती है, ये करती है, तो जैसे हमारे को किस दूसरे पर जाना पड़ेगा कि उनसे ठीक रहेगा कि किसे जाना पड़ेगा?
वो लोग अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं काम।
सही बात है।
और वो जो तुम लोग पहले बड़े बड़े मुलाजिम थे वो उनको छोटा अहदा देना चाहता है और छोटे को बड़ा देना चाहता है। ठीक है, इसलिए खुदा ने चाहा अभी तुम रहोगे उधर ही। समझ गए? बस अब मेरी इजाजत मुझे दीजिए और फिर मुलाकात करेंगे। खुदा
हाफिज़। खुदा हाफिज़।
माइये क्या हालात हैं आप लोग के?
जब आप जन्म लगोगे तो आपकी कौन सी निशानी होगी?
हम तुम्हारा इस बात बता चुके हैं, सब हालात बता चुके हैं हजरत। जनमान पर जन्म की बातें पूछने से हम आप लोग जब से इस शख्स के साथ लगे, जब से नजात हासिल करने का मुकद्दस नजारा देखने की तमन्ना थी, अब तो आई और अब उसके बाद उस बच्चे से अलहदा होने की तकरीबन एक महीने के मुताबिक है। जब हमारा असली निजाम हमें मिल जाए उसके बाद में शख्स से हम अलहदा कर दिए जाएंगे, तब उस शख्स का हमारे से बिल्कुल रिश्ता अलहदा लगा है, तब ये ठीक हो सकता है। इससे पहले हमारा इसी के साथ ही है।
जिस वक्त मैं 12 साल का करीबन हो जाऊं, उसी वक्त मैं यहाँ तशरीफ ले आऊंगा।
उस टाइम पर महाराज जिंदा होंगे?
बिल्कुल इंशाल्लाह।
मैंने सुना है कि उनकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष बाकी है।
ये कहने की बातें होती हैं। 10 वर्ष बाकी है, कम से कम 2 वर्ष और भी है, समझ गए?
तो इसका मतलब है इनके जोर दर्शन करेंगे
इंशाल्लाह। ये हमारा पहले फैसला किया हुआ है
इनके साथ, पहले
इनकी खिदमत में आकर मुर्शिद बनाना है, तब जाके यहाँ रहना है। खोल है खैर, आप लोग हमसे चाहते क्या चाहते हैं दरियाफ्त करना? हमारी तमन्नाएं, हमारे फैसले जो तुम लोगों ने सुन लिए, हमने सुना दिए हैं, उस पर अमल करना या ना करना आपका फर्ज है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं?
आपको मुझसे मिल ही जाएगी, आप और किन किन लोगों को
मिलते? ये सवाल गलत है, आप सवाल कीजिए।
जब आपको मुक्ति मिल जाएगी तो एक ही जन्म में आपको मुक्ति मिलेगी या
10 जन्म?
हमने
तुम्हारे से पहले बता दिया 10 जन्म।
10 जन्म भक्ति करेंगे,
हाँ,
फिर बाद में मुक्ति होगी। कोई ऐसा तरीका नहीं?
गलत है,
खुदा के घर में कोई ऐसा तरीका नहीं।
तरीका कैसे हो सकता है जब अभी इसी मंजिल से शुरू करनी है अपनी कमाई
से शुरू हो गया?
बिल्कुल, ये तो खुदा का अटल फैसला है, इसमें मेरा या किसी का कसूर नहीं है। मेरा छुटकारा प्रेत जामा जो असलियत में है उससे किया, आगे तो खुद करेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। 10 जन्म भी बहुत जल्दी है, वरना सैकड़े जन्म नहीं हो सकती, 10 जन्म के अंदर करेंगे।
नहीं, जो दूसरे आपके माहौल में दूसरे आपके भाई बहन जाए उधर, तो उनका निजात कैसे होती
है? उनकी निजात अपने आप जिस वक्त आखिरत में आए, करोड़ों साल की उम्र बहुत कर, फिर उनको छुटकारा मिलता है, तब इंसानी शरीर मिलते हैं।
उनकी उम्र कितनी होती है?
काफी हो जाती है, कई कई सैकड़े हजार करोड़ों साल तक चले जाते हैं, 4 युग तक चले जाते हैं।
इस युग की
आयु 4,32,000
बाकी है,
हाँ, जिसमें और भी घट जाएगी, 4 लाख से भी कम रह जाएगी।
बाकी जी यहाँ जिसका कोट ले आए
हजरत शेख,
हाँ, ये कौन सी चीज है? ये
एक नापाक रूह है, इसके ऊपर जाने से कोई तुम लोगों को तजर्बा नहीं मिल सकता। हम लोग इस शख्स के साथ लगे, हम लोग बताना चाहे बता सकते हैं, पर हजरत नजार जिसकी हासिल हो जाए वो अपने मकबरों पर मजारों पर नहीं फिरता, वो अपने बहिष्ट में अपने दरगाह में जाता है। तो ले गए
कौन सी ध्वनि प्राप्त है? इनको
बदरू नापाक रू, जो कोई भी इस तरह हम परेशान इस तरह वो परेशान है, ये तो वो जान सकता है, ये हम जान सकते हैं, मुसलमान क्या जाने? मुसलमान तो उसको अपना पीर समझ, जैसे हमको समझते हैं। हम परेशान है, लोग हमारे ऊपर सजदा करते हैं, ठीक है,
वो तो ठीक
है। हम जाने जिसके ऊपर बीतती है या वो जाने, या जिसके ऊपर हम खेलते हैं या वो जाने, चौथे को क्या पता?
आज के जमाने उस जमाने में कौन पीर है?
मैंने आपसे अर्ज किया, मानों में पीर या कोई भी हो, इस सवाल को हम नहीं लेंगे।
नहीं, उसका
मोहम्मद, देखो इस्लाम के अंदर मोहम्मद मुस्तफा को माना गया हमारा रसूल है। देखिए, हम इस चीज से नागवारा गुजरते, हम इस चीज को मानना नहीं चाहते। रसूल कोई नहीं, ठीक है, अपने मुताबिक वक्त के था, लेकिन फिलहाल बिना मुर्शिद के और बिना आमिल मुर्शिद के अपने उसको बनाना और उसके कलाम पर चलना, यही असलियत जो खुदा को मिलाने का रास्ता है। यह ना कोई रसूल मिला सकता है, ना कोई पहले जन्म का गुजरा हुआ कोई भी नहीं मिला सकता। ये बात मैंने आपसे बार बार कही और अब दोबारा फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
संत जी महाराज की आयु कितनी है?
बाकी आपसे अभी बता दी है कि 12 साल है।
12 साल बैठी है।
मुक्ति हासिल करने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए? इंसान को मुक्ति प्राप्त करने के लिए
इसका क्या मैं तुम्हें बताऊं, शुरू करने से या नहीं करने से? इंसान शुरू से अच्छे कर्म करने लगता है, किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया, करते 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 आखिर मर्तबा पूर्ण वली अल्लाह खुदावंद करीम का दीदार करने के लिए मुर्शिद मिलता है, तब जाके बात बनती है। बातों से नहीं हो सकती हजरत, बातें करने से तो करोड़ों बातें कर देते हैं, करने से
एक
बार
बोला था कि आपको जो प्रेत जून मिली है वो आप तो पहले प्रेत का काम करते थे इसलिए आपको मिली है। अगर आपको कोई कामिल मुर्शिद था तो आपको क्यों नहीं बचाया उधर?
मुर्शिद जब था ही नहीं कोई,
अगर मुर्शिद बनाया
नहीं बनाया
तभी आपके साल में आए। अगर मुर्शिद होता तो आपके साल में
नहीं आ सकते थे। मुर्शिद नहीं था, मुर्शिद बनाया ही नहीं हमारे।
आप इतने बड़े कामिल होकर, आपको इतना दुनिया का भी पता होकर, इतने पीर भी थे, आपने क्यों मुर्शिद नहीं बनाया?
ये शरीयत से पूछिए, शरीयत जो कहती है, शरीयत जो कहती है वो करना पड़ता है।
नहीं, मुसलमानों में भी यही है कि वो ये
मुसलमानों के अंदर तुम लोग इस चीज को नहीं मानोगे। 5 चीजें हैं, कलमा, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, समझ गए? ये मुसलमान 5 चीजों पर चले तो मोमिन बन सकता है। तुम्हारा मुर्शिद या बनाना वो इंसान को सीधा करना, एक उसको काफिर समझते हैं।
वो मुर्शिद नहीं
बनता है,
मुर्शिद नहीं
बनाते, नहीं मनाते। अच्छा, तो
लेकिन जो मुर्शिद नहीं बनाते, आप बोलते हैं कि मुर्शिद के बगैर मुक्ति नहीं होती, मुर्शिद के बगैर आगे निकाल नहीं सकते, मुर्शिद नहीं जा सकता अच्छी जगह पर, तो मुसलमान को कौन निकालता है उधर जमी जाते?
मुसलमान इंसान जैसे जैसे भी कोई अपनी नमाजें अदा करे और खुदा ना खास्ता उसकी आहिस्ते आहिस्ते फर्ज करो कि कोई मुसलमान नमाज अदा करता है और किसी भी वसीले से वो किसी भी शख्स के साथ जो दूसरे ख्वाह पूरा मिला हुआ पूरा फकीर होता है उसकी सौबत में बैठता है, तब जाकर जितने भी उसकी सौबत में बैठते हैं, जैसे फर्ज करो तुम अपना, मैं इस चीज को दोहराऊं तो शेख हदीस मौलाना यूसुफ अपने आप पहुंची हस्ती है जो उनकी खिदमत में आ जाए तो उनको रास्ता मिल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता और जन्म बनाता है। अगर वो उसी जगह पर रहे और अपने आप को उसी ही अमाल में रखे तो फिर वो इस चक्कर में से नहीं बच सकता, ये हर एक नहीं बच सकता। कोई जिसको सौबत असर मिल जाए वो बचता है, ठीक है? तुम्हारे गुरु सिख सबको थोड़ा कहते हैं, तुम्हारे इनको कोई कहता है इंसान है, कोई कहता है ये तो वैसे है हमारे जैसे आदमी, सब थोड़ा यकीन कर लेते हैं, बिल्कुल करता है। यही सब मजहब की बात है, मुसलमान और हिंदू इसी को कोई सब
है।
हम आपसे इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग की समझ में नहीं है हजरत, तुम्हारे से भी बातचीत की है कि बिना मुर्शिद के निजात नहीं मिल सकती। फिर अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म निजात नहीं दिलाएंगे, फाउल देंगे, तो आप समझदार हैं। अच्छा, खैर, इससे अलावा हम लोगों ने आपसे पहले बातें चीतें की हैं, आप दरअसल मुझसे बात कहने चाहते हैं कि असलियत में हम लोग किसी के साथ लग गए और उसको फिर जैसे हम इस शख्स के साथ लगे, इसके बुरे हालात किए, घर वालों ने देखा परेशान किया, लेकिन हम बोले और हमने कहा मुसलमान है, हमारा असली मकसद इसकी साथ नजात का है, अगर तुम हमारी नजात करा दोगे तो ये शख्स का पीछा छोड़ देंगे, नहीं तो हम छोड़ नहीं सकते, चाहे तमाम कोई भी मौलाना ताकत लगा ले, हम इसके साथ लगे हुए हैं। बात दरअसल ये है,
साथ लगे हुए हैं, अगर फर्ज करो महाराज के साथ आता मिलना होता तो आप इस लड़के की जान भी ले लेते?
मैं समझता हूँ मिलना होता क्यों ना, होता लेकिन मरने के बराबर तो कर ही देते हैं। जिस शख्स के साथ लगे हूँ उसी से खुराक खानी है, उसको सोने नहीं देने, समझ गए, इसको दिन भर दिन उसके दिल दिमाग को अपनी तरफ खींचना है, फिर वो कैसे चैन और आराम से रह सकता, आप जो समझ पा रहे हैं जो हमारे हाथ से मारा जाए हमारे नहीं मिलेगा। पूरा मुर्शिद वाला नहीं मर सकता, लिचड़ आदमी जो हमारे गंदगी से पले उनको तो हम कब्जे में कर लेते हैं।
ठीक बात है।
जिस वक्त हम किसी को हमलावर करते हैं तो उसको 3 साल तक पता नहीं देते, अगर हम पहले पता दे दें तो हमारे निकालने की तरकीब आ सकती है। जिस वक्त तक हड्डियों के कब्जा न कर ले, जब तक इंसान को खेल कर नहीं बताते, और जब ही बताते हैं जब पूरा कब्जा हो जाए तो मिल गए, ये हमारा दूसरा नुकसान। आप क्या समझते हैं, हम तो मकौल नहीं है, हम सब चीजें समझते हैं। ये शख्स तो ऐसे ऐसे कितने हमारे कब्जे में आए चले गए, इसको इतनी रहमत है कि मारा नहीं लगी, लेकिन हम कब्जा इंसान का दिमाग हमारे बराबर में हमारी समझ से दूर है, इंसान का दिमाग वाणी जात को जान खुद चले जाते हैं। समझते देखो बात ये है कि किसी भी किस्म से हम लोग किसी को हमारे और सावधान कहते हैं कि पकड़ कर मार दो किसी को भी, लेकिन बिना खुदा के हुजूर से तो कुछ हो नहीं सकता। दरअसल जो होगा तो वो उसी के जरिए मरना होगा, तो वो खुद उसी जाने में मिला दिया जाएगा। ये बात आपको सुनाई है हमने। अच्छा, अब बात रही आगे आगे, आप जो इस चीज को देखें कि इंसान अच्छे काम करे और अच्छे काम करने के बावजूद वो खुदावंद करीम को बात करे, बा मुर्शिद, मुर्शिद का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, क्योंकि बिना मुर्शिद के तो इंसान की निजात हो ही नहीं सकती, ये फैसला है। क्योंकि बिना मुर्शिद के तुम लोग देखते हो बड़े बड़े तपस्या करके चले गए, दरअसल मंजिल मार्फत तक पहुँचने की हिम्मत ना पड़ी। अच्छा, और आप भी देखिए आपकी इस आलम में कितने बे मुर्शिद है, कब उनके दिलो दिमाग को चैन आराम नहीं, परेशान है, पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, और जो बामुर्शिद वाला है उसको दूसरा हराम है। ये तो तुम्हारे सामने फैसला है, पर शैतान इब्लीस इसके पंजे से इंसान निकल नहीं सकता, उसको मारने के लिए मुर्शिद दिए हुए कलाम की जरूरत पड़ती है, जब जाके ये खत्म हो जाता है तब इंसान सुकून से जिंदगी अपनी जान बसर करता है, और आगे मरने के बावजूद फिर खुदावंद करीम उसको अपने ही वतन में अपनी असलियत में जो एक चांदनी, एक नूर, एक बिल्कुल ऐसी रोशनी है जिसकी जिसकी रोशनी के जरिए तुम्हारे कतरा है वो सब उसमें मिल जाए, तो फिर ऐसा है जैसे एक बिजली का घर है और सब बल्ब जलते हैं और वो बल्ब की जो बिजली है उसी में चली जाए, सब एक बन जाए।
उधर जाता है, ठीक है, दुनिया में कितने मजहब है, कितने दुनिया के इलाके हैं, और सब खुदा का जुदा जुदा नाम है, जुदा जुदा उनकी बोलियां हैं, जुदा जुदा उनके कस्टम्स हैं, बैठने के, उठने के, शादी के, जगह जब जाते हैं तो
होता है। सुनिए, इंसान का जैसा रहना सहना है, एक फर्ज कीजिए आप सिख हैं, मुसलमान का बच्चा आप अपने यहाँ उसको पालना शुरू करें, जो 15 साल का हो जाए तो वो अपने आप को क्या मानेगा, क्या मानेगा, बस फिर है कौन वो, बस फिर तो यही सवाल आता है, खुदा
सबके अंदर एक है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ये खाए जो यहाँ के खुद लोग खुद गर्ज लोग हैं, उन्हीं की ये बनाई जात है, उन्हीं की बनाई बातें हैं और वो उन्हीं के ऊपर चलकर अपने आप को अलहदा अलहदा बताते हैं।
वो तो ठीक है, लेकिन जब वो तो जाते हैं
सिर्फ एक फैसला होगा, धर्मराज इज़राइल फरिश्ता कह लो उसको,
वो जीने की है
सब देख है,
जितने मुल्कों के जुदा जुदा बंदे हैं
सब देख है। हजरत हम आपसे दोबारा कह चुके हैं ये एक है, इसको अलहदा अलहदा तुम करोड़ों नाम ले सकते हो, सिर्फ शायद रू एक है, उसको पानी एक है, उसको घड़े में डाल दो, उसको छोटे से बर्तन में डाल दो, उसको बड़े से बड़े मठ में डाल दो, है क्या उसके अंदर पानी, इसलिए तुमको मिसाल दे दी, आपको आपकी समझ में आ गया बस खैर आप। अच्छा इस वक्त हम लोग
जो दुनिया में मालूम है उससे सबसे अच्छा मालूम कौन है जिसकी खेती गरीब हो
सकता है, सबसे मज का सवाल वो है जो पूरा मुर्शिद जिसको मिल जाए और मुर्शिद पर पूरे पर चले, तब जाकर वो अपने असली मंजिल मकसूद को पहुंच जाता है। दरअसल मुसलमान के अंदर तुमको काम मिले क्योंकि मुसलमान नफ्स को मारना नहीं जानते, शरीयत के पाबंद हैं, हिंदू अपनी शरीयत के पाबंद हैं, लेकिन जो तुम लोग सिखो, सिख के अंदर जो असली बली अल्लाह होते हैं उनकी जो शरीयत है वो तुम्हारे से अलहदा होती है। दरअसल वो मन की सफाई इसलिए जल्दी करते हैं, एक उनका दिल ऐसा मुलायम है, दूसरा नफ्स को मारने के लिए गोश्त वगैरह नहीं खाना, तीसरा हर शख्स को बड़े मोहब्बत से मिलना है, इसलिए पूरे मुर्शिद तुम सिखों में ज्यादा होते रहे बजाय हमारे मुसलमानों में हुए तो किस किस सौदत से हुए तुम्हारे सिखों भी हुए हुए नहीं हुए
वो तो
इसलिए ये बात हम आपसे बताएं कि असली मुर्शिद का जो बात होती है वो किसी मजहब से नहीं ना किसी से ताल्लुक रखता है, उसका ताल्लुक स्वयं खुदा से होता
है।
खैर आप बात और छोड़िए, जो तुम्हारे मतलब दो तुम लोग क्या बोलना चाहते हैं, अब हमें तशरीफ ले जाने दीजिए क्योंकि तुम लोगों हमारे सामने बहुत कलाम लिख लिए हैं, ये कलाम तुम इन पर अमल करो तो तुम्हारे काम के हैं। देखो हमने इस जिंदगी के ऊपर गुजरे हैं, हम किसी के नजायज बात नहीं करेंगे, जो हमारे सामने हुए सुनिए, जो हमारे सामने ये बातें आई हैं हमने तुम्हारे सामने बताई, हम किसी के साथ कोई बात या किसी को कोई भी बात सुनाने के लिए उसके ऊपर जोर नहीं दे सकते, ये तुम्हारी मर्जी है, करो तो अच्छा है नहीं करो तो ना अच्छा है, हम अपनी गुजरी जो हमारे ऊपर उसको बिता लो, आगे जो खुदा ने चाहा इंशाल्लाह वो भी अच्छी दिखेगी।
जिज्ञासु के लिए कौन कौन से कर्म करने बहुत जरूरी है,
कर्म करने की बात तो आज फिर उसी जगह पर आते हैं, पहले जो तुम्हारा मुर्शिद बताए वो करो तुम, बस उसके आगे हम नहीं कुछ बता सकते। अच्छा तो इस वक्त फिर इजाजत दीजिए हमें,
गुना के नाम का
हम आपके सामने
खुदा का नाम जितना लिया उतना थोड़ा होता है, जितना लिया उतना थोड़ा, खुद बहुत खुदा का हर वक्त
नहीं
रखो,
हम ये भी खुदा की ही बातें सही
बातें कही है, ज्यादा थोड़े हुए
कलाम हम लोग बहुत सुनाया है पहले और इसका तबीयत साथ ही गई है क्योंकि इस कलाम ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, इसलिए दिल घबरा जाता है, असलियत है कलाम वो पढ़ो जो तुमको तुम्हारे मुर्शिद ने बताया,
वो तो ठीक है।
खुदा की बात तो एक ले लीजिए कि खुदा ने जो भी बताया है बंदगी बंदगी बताई है, बस उसको याद करोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं याद करोगे तो नहीं फायदा है, ठीक है। तुम कैसे भी कर लो अलहदा अलहदा है, दरअसल हम लोग तो जिस वक्त तुम्हें बताया है कि जैसे जैसे हमने सिफ्तें करी हैं करते रहे, लेकिन अब तो सिर्फ अगली जिंदगी की तमन्नाएं में जो आगे करना उसकी सिर्फ जिस भी अल्फाज में करेंगे वो एक ही चीज हो सकती है, समझ गए, उसी एक ही मंजिल को लेकर इंसान चल सकता है। अगर तुम कभी इधर जाओ, कभी उसकी तारीफ उधर करो, तो तुम्हारा जो असली मन तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता। मन तभी आ सकता जब तुम एक चीज पर हो।
तो
बेहतर है उसके लिए। हम चाहते हैं, हम शरीर को पसंद करते थे जिस वक्त हम अपने असली मुकद्दस शरीर में थे, तो हमारे हजरत मौलाना यूसुफ मौलाना अली शाह के मजार पर हर वक्त कवालियां होती थी, हम सुनते थे, बड़ा रोमांच आता था, लेकिन रो रो कर हम मर जाते थे। ऐसी ऐसी कवालियाँ आती हैं, अच्छा आप समझना चाहते हैं कवाली से मतलब रखते हैं, इसलिए ठीक है। दरअसल बात यह है कि कवालियाँ भी हम बहुत सुनी, और इसका संगीत से ज्यादा मन टिक जाता है बशर का। बजाए देखिए देखिए बजाए वैसे करने से, ये मैं आपकी बात मान काबू करता हूँ इसके बाद। तो खैर आप लोग तो देखिए, पहली बात यह है कि आप लोगों को मेरे जो कलाम कहे हुए हैं जिनसे आपको कुछ नसीहत मिलती है या नहीं मिलती, ये फरमाइए।
तभी तो आपको इतना कष्ट देते हैं।
इस चीज को मैं देखा अजीजो, मेरे अजीजो, मैं कोई तुम्हारे से बात गलत नहीं कहता हूँ, ये नक्शा तुम्हारे अंदर चंद ही दिनों में आ भी जाएगा मरने के बाद, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है।
एक बार
मैं वैसे कहूँ तो तुम्हारे हम ही आने वाला
तो ठीक। एक बार दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने सिख के घर में जन्म लिया है, आपने खुद महाराज जन्म दिया,
खुद देना तो उन्होंने था, दरअसल हमारा बहाना हो जाता है। इस चीज को तुम राज को नहीं समझो, ये तो उन्होंने पहले ही से पता था, उसको बताया कि तेरे घर जन्म लेगा, बात है।
जब राज राज ना रहे तभी उसके ऊपर विश्वास आता है, जब राज राज रह गया तो विश्वास ही ना आता है।
विश्वास अगर आज भी आज तो नहीं आएगा तो आए
नहीं सकते। नहीं विश्वास तो है, नहीं बात ऐसी है, जो राज राज पास ही होता है क्योंकि उसका जो असलियत होती है ना वो समझ में नहीं
आती। तो हमने बतलाया हमारा इसी के मकामी जगह पर भेजना, इसी के जगह पर जाना ही था, यही उन्होंने बतलाया था और उन्होंने हमारे को इधर भेजा है। इंसान या हम कुछ नहीं कर सकते, ये उन्होंने पहले से उन्होंने बतलाया था, समझ गए, मुझको नहीं उनके खानदान को, तो तुम्हारे घर अब ऐसा हालात हो जाएगा। ये आज से कई साल की बात पहले है,
पहले उनको बताया ना,
क्या तुम दरियाफ्त कर लो।
तो जब आप महाराज के पास गए थे उस टाइम पर, उसी टाइम पर महाराज आपके ऊपर खुश हो गए थे या आपको कुछ उनकी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी?
नहीं, खुश हो गए थे जब,
उसी टाइम पर खुश हो गए
थे।
उसी टाइम पर आपको जन्म देने के लिए उन्होंने कबूल कर,
तीसरे दिन। अच्छा तो खैर आप आजाद दीजिए, फिर कभी मुलाकात करेंगे। अच्छा
सर एक बात ये तो बता दो, ये जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, कई इंसान ये कहते हैं कि ये दुनिया में इधर ही नरक और स्वर्ग इधर ही है, कई ये कहते हैं मन का
बेटा का आपकी मंदिर जब जाएगी तो खुद पता लग जाएगा।
वो तो जब ही पता लगेगा, पता लगा
एक नहीं है, हजारों करोड़ों आलम है, एक नहीं है जिसको तुम समझते हो, ये एक नहीं है, ये कितने हैं। पर ये जब पता लगता है, जब तुम उसको शरीर,
अभी आपको इसलिए पूछते हैं ताकि आपमें हमारे को कुछ अकल आए। अकल का मतलब यह होता है कि कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए आपको कष्ट देते हैं टाइम टू टाइम में, कि आपने कुछ अकल आए, सीधे रास्ते पर चले, आप हमारे को अच्छा उपदेश देते हैं तो सीधे रास्ते चलेंगे। तो आप ये बताइए कि नरक और स्वर्ग जैसे दुनिया बोलते हैं कि इधर ही है, और ये जो बुरे कर्म करते हैं उनको इधर ही कष्ट मिलता है, आगे कुछ नहीं होता, ये इधर अच्छे कर्म करते हैं उन्हें तकलीफ नहीं
होती। तुम लोग सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के जरिए जाओ, तो आकाश में जितने भी तुमको तारे तुम चुनाते हुए आकाश में दिखाई देते हैं, ये सब कितने ही ब्रह्मांडों का नक्शा है। जितने भी चांद सूरज हैं सब ब्रह्मांडों का नक्शा है, जिसकी यहाँ तक रोशनी आने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस चीज को तुम हम लोग इतनी बड़ी मंजलिस को तय करके पता नहीं लगा सकते कि आखिर खुदा ने कहाँ कहाँ तक दुनिया बसाई है। इंसान तुम्हारे ताकत नहीं कि तुम उसको जान सको, सिर्फ इतनी ही अपनी बात को चलो कि अपना बंदगी करो, बात करो, यही इबादत ही आगे चल कर तुम्हें जो कुछ संसार आलम है वो तुम्हारे अंदर दिखाई देने लगे।
वो तो ठीक है, कई मुल्क कहते हैं जो साइंस में बहुत ऊपर आ चुके हैं,
ठीक है,
वो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, और साइंस के लिहाज से बोलते हैं कि ये कैसा पावर ही है। क्यों, जैसा अभी अमेरिका है, अमेरिका ने एक और आदमी को ऑपरेशन करके और बनाया, और फोटो भी देखा मैंने उसका मेडिसिन में, इधर तक हो गया है। क्या आप अभी आपका क्या विचार है इसमें, और फिर वो मुल्क कितना ऊपर क्यों आता है?
देखिए, जो इंसान खुदा से मुनकिर हो जाता है, पहले मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे किसने बनाया है, तेरा बनाने वाला कौन है, इसका जवाब दे मुझे।
वो तो ये बोल देते हैं कि हमारे माँ बाप ने बनाया।
माँ बाप ने कैसे बनाया, तुम्हारे माँ बाप को किसने बनाया, आखिर कहाँ से इंसान आया?
पहले इंसान तो हिंदू कुछ बोल गया, ब्रह्मा ने पैदा किया।
ब्रह्मा कौन था?
चल बस हिंदू तो ये
बोलते नई बात सुनिए, इस चीज में आप ना पढ़े। इंसान की जब कीड़े की मौत आती है तो उसके पर निकल आती है,
ये तो ठीक है,
उस तरफ आप ना जाइए। खुदा का शुक्र है आपको एक नेक रास्ता मिला,
ये तो ठीक है।
एक कुएं में पड़ा हुआ मेंढक, उससे यह कहा जाए कि बाहर कोई और भी आलम है, तो वो हजरत हरगिज यकीन नहीं करेगा, जो कहेगा यही मेरा सब कुछ है, लेकिन बाहर भी आलम समझ गए। इसलिए अगर हमें यहाँ भी कहा जाए कि आगे कुछ और है तो हम तब भी यकीन नहीं करते, यहाँ तक हमें यहाँ से मर कर जाना है, लेकिन हम तब भी यकीन नहीं करते हम कभी मरेंगे और कैसे जाएंगे, समझ गए। अगर वो तुम्हारा साइंस वाला जबरदस्त है तो अपने आप को इस जिंदगी से लापता क्यों होने देता है, वो जिंदा क्यों नहीं रह सकता?
जब वो कोशिश कर रहे हैं कि जरा भी इंसान मरता है उसमें इंजेक्शन वगैरह देते हैं, बोलते हैं फिर उसमें जान पड़े, और कई दफा ऐसा होता है हाथ
लगा तुम हमारे सामने लाओ बुला के, एक महीने तक है जो इंसान खुदा से मुनकिर है, तुम उसको हमारे सामने ले, हमारा ऐलान है और हम तुम्हें इस चीज की गवाही देंगे, समझ गए। लेकिन जो खुदा से मुनकिर है, मैं समझता हूँ कि उसकी जिंदगी एक नाजायज कुत्ता छाला हरामी फिरता है, जिसका कोई भी वारसी उससे भी ज्यादा गंदी है। आगे तुम्हारी मर्जी है, इतनी बात कहने से हम लोग आ गए और हमने अपना भला लेना है इन बातों में तुम्हारे में। हम देखो, हम लोग तुमसे ये बातें करी हैं, बाकी मेरी असलियत से ये दूर है। मैं जो यहाँ लेने के लिए आया था इस शख्स के साथ में, वो मुझे मिला, अब इन बातों से मैं काम खम ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अब मैंने मुख्य रास्ता आपको बताया है, उसके ऊपर तुम चलोगे तुम्हारा फायदा है, नहीं चलोगे नहीं फायदा है। क्या तो इतनी बात कह के अब हम जाते हैं, सवालियाँ क्या सुनाए,
खुदा के नाम के हो जाएगा
मुनकिर हो सकते हैं हम अपने चले इस्लाम से, कि हम तेरी दीदार करने के लिए आए तो आया अजमेर तेरी, हम दर्शार देते हैं आखरी तेरी हस्तियों को जलवाय करिश्मा दिखाते हैं, हम तो तेरे दर की खाक है, हम तो तेरे दर की खाक है, हम तो तेरे दर की साथ है,
हम तो तेरे दर की दासी हैं, हम जैसे मौजूद नाम की क्या तरसते हैं। या अल्लाह पाक हम रोजाए कयामत की रखते हैं, के दिन हिसाब की उम्मीद रखते हैं, खुदा कैसे हमारा तेरे दर पे चढ़ेगा, खुदा कैसे तेरे चढ़ेगा।
अच्छा से मुबारक
माहौल
वाला खूब तैला बिल्ला अपनी तकलीफ ले जाइए, हम ज्यादा नहीं बात करेंगे।
आपको जन्म देने के बाद इस जन्म का इल्म होगा।
हमारी है हमारा जो समय गुजर रहा है वो इस मुसीबत में है, इस शख्स के साथ हमें इसको भी हमारे रहने से परेशानी है, लेकिन उसके आने वाले वक्त में हमारा जिस वक्त अगले आलम में आएंगे जन्म लेंगे उसके बावजूद देखना कि माशाल्लाह हमारी इसी जगह पर हम इबादत करेंगे,
खूब करेंगे,
हाँ इसी मुकाम पर, और इन्हीं बलियतों के सामने आकर बात करेंगे 10 साल के बाद में इसी मुकाम पर,
इसी मुकाम।
हाँ ये जहरा तौर पर है कि ये वली अल्लाह जो खुदा वाले होते हैं वो हर सही है कि इंसान क्या वो प्रेत से खुदा बना देती है, ये सामने मिसाल मौजूद है तुम्हारे।
तो फिर कोई निशानी बताइए जो आप 10 साल के बाद हमें देखना है।
हमारी निशानी हमारा गुरदीप सिंह नाम रखा जाएगा,
और
पहली निशानी हमने बताई,
दूसरी
यही सबसे बड़ी निशानी,
जिस्म की निशानी बताइए,
निशानी जिस्म की निशानी, ये अभी मैं इस चीज को जिस्म को मैं बनाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मुझे को इतना इल्म है जो सिर्फ ये हमारा रात हमारा आना जाना। सुनो मेरी बात, रात को कभी कभी हम उन वली अल्लाह के पास चले जाते हैं इस शख्स को छोड़कर, वो हमको अच्छी तरह जानते हैं कि हम कौन है और कहाँ से आए थे, ये तुम लोग नहीं समझ सकते।
आपने इसे बताया था कि हाँ। आपके माथे से काला धार होगा,
वो ठीक है,
वो धार कैसा होगा,
वो पहला निशानी हमारी जो है वो हमारा नाम ये रखा जाएगा, मैं तुमको उस दिन ये फरमाया था,
नाम को आपने हाँ, बता दिया
हाँ,
और दूसरे आपने ये बताया था कि आपका कद महाराज जी से छोटा होगा
हाँ,
और गुरदेव सिंह से बड़ा होगा
हाँ,
ठीक है कि नहीं,
ये बात तो मैंने आपसे कही,
काला दाग होगा हाँ, उसकी बात को बताया कि कैसा होगा,
वो एक सिर की माफी होगा, निशानियां तो होती है, ये कोई हम खुदा के ये नहीं कि हम कोई यहाँ पैगंबर बनकर आ रहे हैं, ना हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तुम एक इबादत गाह बन कर तब आगे नजात को हासिल करने के लिए आ रहे हैं, समझ गए, हम कोई दुनिया को या को अपना को अपने ये नहीं कर रहे, क्या रहे कि हम अपना कलाम सुनाने के लिए आ रहे हैं, हम इस शख्स के लिए इस अपनी प्रेत जो हमारी सूक्ष्म में हम बोल रहे इसको ले जाकर खत्म करके उसमें 5 स्थूल जो 5 तत्व का बना हुआ स्थूल थी उसको हासिल करके खुदा बंदो इन गली अल्लाहों ने महापुरुषों ने हमारे को वो शरीर दिया इसलिए कि हम इबादत कर सके, और इसका मरतबा यही है कि हम इबादत करेंगे, और इसी साल के अंदर इंशाल्लाह हमारा जन्म हो जाएगा, ये उसके बावजूद हम अपने आप सब औकात भूल जाएंगे, सिर्फ इतना हमको जरूर इस जन्म के इस चीज से रहेगा कि हम इबादत करेंगे खुदा की, और इंशाल्लाह आगे नजात वहां करेंगे, ये मुझे पूरी पूरी खुदावन के ऊपर यकीन है, और मैं इस चीज को पूरा पूरा यकीन रखता हूँ, समझ गए। ये ब्रह्म ज्ञान के जरिए लोग पहचान महापुरुष वली अल्लाह पहचान सकते हैं, ऐसे जो तुम्हारी दोनों आंख है इसलिए अपनी दिव्य नजर दिव्य दृष्टि से तुम हमें देख सकते हो, जो तुम्हारी दोनों आंखें स्थूल अंक मुझे नहीं देख सकती, ये जो माया रूपी आलम में जो चीजें इनको देख सकती है, मुझे देखने में तुम्हारी आंखें कामयाबी नहीं, मुझे देखने में दिव्य दृष्टि से देखा जाए, समझे हजरत।
ये बातें हैं। अच्छा आप मुझे याद दीजिए
अभी
बस इनकी
वो आदि आए हैं
इनकी हमें यही है कि अपना ये गुरु वाले हो जाए मुर्शिद वाले बन जाए
उनको बन जाए
उनकी दी हुई कलाम जो इनका दिया हुआ उपदेश उसको उसको रटे उसको अमल करे माशाल्लाह इसी में इनकी बताई है। इसलिए मैं करूँ नहीं कुरान में हमारे पहले आयत आई है नमाज के साथ में तो फर्ज करूँ कर तुम ऐश करूँ भला तक करूँ है बंदो तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे तुम हमें याद करो हम तुम्हें याद करेंगे। फिर साथ में दूसरे आए कि इन अल्लाह कि मैंने रिजक का वायदा किया और रिजक का देने वाला मैं हूँ फिर इन अल्लाह माशी अंत मौलाना अल मुकाबिल यानी मेरे मैंने मैंने तुमको यहाँ जो भेजा रोजी के लिए नहीं बात के लिए और इन अल्लाह माशी कदर रखो और बशर हे इंसान जब तक तेरे कदर तक पैर नहीं चले जाते जब तक तू हवस से मारा मरा रहता तेरी हवस तब तक भी पूरी नहीं होती जब तक तेरे पैर कदर तक नहीं चले जाते जब तक भी तू हाय हाय और हवस का मारा हुआ मरता फिरता एक दूसरे को धोखा देता गला काटता जिसको खत्म कर और इसके बाद में तुझको मैं अपना बंदा समझूंगा अगर तू इस काम के लिए मैंने तुझको भेजा है। लेकिन इंसान के बस की बात नहीं इसको वही अल्लाह के बंदे ही जान सकते हैं। इंसान बेचारा क्या जानेगा जो दूसरे के हाथ पर नाचता है। खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहते इतना ही कहना चाहते कि मेरे जीवे ये जमीन है इस जमीन को बनाने वाला वही है जिसवा ये जमीन नहीं है इसको तुम जमीन समझो तो इसके नीचे खुदा का आब है पानी है ये उस ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है इसका मुझे जवाब दो आज तुम ये जमीन नहीं है पिछौरा है जो तुम्हें जमीन दिखाई देती है
ये तो एक
हाँ
खुदा का कृष्ण
बात जो तुम देखते हो ये अपने आप को ये शरीर नहीं है कुछ और है समझ गए इसको हम नहीं समझ सकते हमारे से भी इसको वली अल्लाह अल्लाह के दर में समझ सकते हैं। जब तक हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अब हमें अपनी जो बिछड़ी हुई जिंदगी थी वो फिर मिल गई और उसको फिर हम अगले जन्म में ऐसी अगले जन्म के साल भर के बात करें कोई किसी साल नहीं आए और कोई उनको हजार साल नहीं लगेंगे जन्म है और उसके बाद मैं इसीलिए उनके चरणों में रोया था कि मुझको शरीर मिल गया मुझको खूब शरीर की जरूरत थी वो कोई महात्मा नहीं दे सका इन्होंने हमारे पर रहमत की गुलाल मीन इनको बहुत मैं इनके लिए बहुत दुआ करूँ और इनको ही अपने मुर्शिद बनाया आगे आने वाले वक्त में भी वो शरीर इन्होंने मुझको दे दिया और उसके बाद अब मैं आकर इन्हीं की रहने से मुसलमान जरूर हूँ माशाल्लाह लेकिन अभी मेरे जन्म का मुसलमानी पांच खून शरीर मुसलमानी था मेरी भी मुसलमान नहीं थी मैंने उस खून का जिक्र किया कि मैं मुसलमान जामे में था बिल्कुल मेरी आत्मा मुसलमान नहीं है मेरी आत्मा एक खुदा का नूर का कतरा है समझ गए। अब इतनी बात करना चाहता हूँ शख्स सिर्फ बात है तो मैं शख्स को मारा नहीं मैंने इसको जान से नहीं मारा ये वाक्य मैंने इसके घर वालों से मैंने बार बार कहा कि मेरी निजात हो जाएगी मैं शख्स को छोड़ दूंगा वो मेरी निजात कराने में कामयाब ना हो सके ना मैंने इसको छोड़ा आज मेरा आखिरी ये जो मंजिल मेरी मंजिल थी वो मुझे मिल गई और समय के ऊपर बात है देखना कि देखो कि हम इसे होगा क्या हमारा ये आफत है कि हमारा फूल सही मिल गया हम अपनी बात करेंगे ये अपने महापुरुषों में दाखिल हो जाएगा दोनों का भला तीसरा उस शख्स का भला जिसके हमें जन्म दिया उसकी भी इच्छा लग खुदावन के हुक्म से अच्छा नाम रोशन हो जाएगा नाम तो इसका पहले ही रोशन है अब जरा इबाद के दर्द से रोशन हो जाएगा तो महाराज जी और खुदा में कोई फर्क है कोई फर्क नहीं है जो खुद मुर्शिद होते हैं वो खुदा के बराबर उनका एक शरीर का फर्क रहता है जितने जो हमारे लोगों के लिए लेकिन उनका बीच में एक दू है वो एक मिली जुली होती है सिर्फ ये काज सूप शरीर इसलिए लाते हैं कि हमारी ये दोनों आंखें उस सूप शरीर को देख सकती हैं ना कि उसको देख सकती हैं जो रूह रूहानी जो मेरे फैली हुई ताकत है उसको हम लोग नहीं देख सकते तुम लोग नहीं देख सकते तुम इस आंखों से इस मिट्टी के कितने देखो इसलिए मिट्टी का ये जामा पुतला आते हैं और इसके अंदर तुम लोगों को सीधा रास्ता बनाते हैं। सोता है खुदा के अंदर एक ही तरह का है, इसमें कोई खास फर्क नहीं, बिल्कुल इतना फर्क भी नहीं जितना कि दूध के अंदर एक चिंता पड़ा हो, इतना भी नहीं है। समझ गए? तो खैर अब हमारी स्थिति तुम जो ज्यादा माशाल्लाह आपको इंसान है, हमारा तो फिर भी दूसरा दर्जा था। खैर आपको तो समझ है, शुक्र है। अब दरअसल असली मकसद की बात क्या है उसको कहिए मेरे सामने,
क्या मकसद की बात है,
क्या मसले मिसाइल किस लिए हाजिर हम हुए तुम्हारे तुम्हारे लिए हुए हैं।
ये भाई साहब कह रहे हैं कि मरने के बाद कैसे ले जाते हैं,
मरने के बाद ये फैसला मैंने तुम्हें 20 दिन सुना चुका,
मुझे नहीं सुना
देखिए, ये शरीर है, ये शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर उस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को निकालना ही मौत निकालती। जैसे दोस्त उसे हवा के लाते सूक्ष्म शरीर से होते हैं, वो लोग जो लेने के लिए आते हैं तो वो जब आते हैं तो उनकी चमक इतनी तेज होती है, खुदा के कल से अगर तुम्हें पड़ जाए तो कई दिन तक तुम्हें होश न रहे, उनका इतना होता है। और वो एकदम इस सांस के जरिए जा करके उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर को नहीं पकड़ते, इसको नहीं लेते गंदगी की जगह, इसको झेड़े सूक्ष्म शरीर जो होता है उसको पकड़ते, उसको तो इंसान उस ऐसा महसूस करता है कि मैं जा रहा हूँ। और उसको हर तरह का खुदा का नजारा ये आता है, जैसे एक चक्कर है उसके सामने तो जिंदगी की कमी थी कि तूने यहाँ आया, क्योंकि उस वक्त उसको ये महसूस होता है कि मैं जहाँ अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं मर रहा हूँ, बीच की जिंदगी उसको ऐसे लगती है जैसे चंद अर्था गुजरा थोड़ा फल। तो हमारे मुसलमानों में इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान कहते हैं अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी उसको जगाते हैं भाई की जहाँ आए इबादत कर, जिस वक्त मरता अजान नहीं कहते, सिर्फ जनाजे की नमाज खड़े होकर करते, सीधा भी नहीं करते। इसलिए ये बताते हैं कि हमारे नमाज जैसे अजान होती है और नमाज होती है उसमें सिर्फ दो सेकेंड का या दो मिनट का फासला रख ले, चार का या दस का, मतलब तेरी जिंदगी इतने समय के लिए है, चाहे तू 1000 साल जीवे 100 साल जीवे, है। तो इसलिए वो उस वक्त शख्स जो जिसको वो लेते हैं उसको ऐसा लगता है कि मैं चंद सेकंड के लिए आया हुआ मैं जा रहा हूँ, तो उस वक्त वो बोल नहीं सकता, अलबत्ता उसका रोने भी शक्ल होती है, वो अपनी जबानी किसी को कह भी नहीं सकता। तो इसलिए कभी कभी कोई शख्स मरते हैं तो मरते हुए बता नहीं सकते कि मेरा फलाना कैसा था, उसको इस तरीके से दबाते हैं कि वो बेचारा बेबस रहता है। और एक कांटों पर कड़ी हुई साड़ी पर चादर पकड़ी है जिसे उससे खींचा जाए और वो फट जाती है, ऐसे सूक्ष्म शरीर को तकलीफ देकर बाहर निकालते हैं और तब उसको आगे ले जाते हैं। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी
है,
उसकी तो तुम्हारे लोगों को पता नहीं है, तुम गुरु वाले हो फिर भी नहीं जानते हो,
हमने क्या दरवाजा देखा, हम तो जानते नहीं दरवाजा कैसा है।
सौ दफे तुम वहां से गुजर कर आए आया करते हो
ना, हो तो ठीक है, सौ दफा गुजर कर जरूर आए, लेकिन हमें मालूम नहीं है,
नहीं मालूम है अभी तुम्हारा दिल कह रहा है, मालूम नहीं तुम्हारी रूह को तो मालूम नहीं, बस सब अब फिर कभी मिलने, बहुत बात करनी हमने।
अरे वो तो बता देना
कि शक्ल जैसी भी समय में तुम ये फिर कभी मुलाकात करेंगे, हाँ इस चीज को जितने भी खुदा के इतने ये बात आगे काम करने वाले हैं वो शक्लें एक नियत नहीं रख सकते, उनकी शक्लें वो अपनी मर्जी के अनुसार जो देखते हैं, वो जैसे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जब उसकी आराधना उसकी बात करता है तो वो शक्ल बदलता, उसी के दौरान उसकी यानी हर तरह की बात करता, लेकिन वो रात नहीं ले सकता है। इसलिए बतलाया किसी भी खुदा की बात करो और खुदा की बात करने की तुमको निजात मिलेगी, और देर करते तो मुर्शिद कामिल हो, मुर्शिद
मारा।
عالم میں پڑے رہ جاؤ گے. ہماری خوشی میں یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے بدعملوں پر ہمارا یہ حضر ہوا کہ آج قیامت کے میدان میں ہم بچھڑے رہ گئے, اور آج دیکھو تمہارے سامنے اب ہمارا کیا حصر ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا. اور ہم لیکن فی الحال ہم بڑے پریشان رہے اپنے مزار پر, ہم نماز ادا کر سکتے کچھ نہیں, کچھ پریشانیاں یہ تو ہمارے اچھے کام تھے کہ ہم آباد کی نماز ادا کی, اس کے لیے اس کا یہ ہم کو نتیجہ ملا کہ ان کی اہل ذمہ کی شخص نے ہم کو محفوظ ولی اللہ کے بندے کے پاس لیا ہے, اور اس قبیلے نے ہمارے اوپر رحمت کی کہ ہم کو جامہ دے دیا ہے. اب پھر دوبارہ ہماری عبادت شروع ہو جائے گی. یہ بات کہہ کر
اور چلتے ہیں,
ہماری خوشی میں خوشی ہے, چلتے تو نہیں ہم, ہم تو اسی کے ساتھ رہتے ہیں. تم لوگ جانے تو نہیں, اسی کے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر تمہاری خواہش جو ہے تم اپنی خواہش ظاہر طور پر کر دو, تمہاری خواہشیں اسی گھر پہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پر ٹھیک ہے, پر ٹھیک ہونے کا دل نہیں کہتا. ارے دیکھو جس دن تمہارا دل کرے گا اسی دن بالکل صحیح ہو جائے گی.
اچھا
ہم نے کل گھر میں لے لیا, تمہاری تو اتنی دیر ہوگی. ارے مہاراج جی سے مانگو گے تبھی تو جو مانگنا آ جائے گا.
مانگنا تو سکھا دے نا,
مانگنا تو سکھا دے. یہ آپ نے سکھاؤ گا. اچھا سوال آپ سے کرنا,
سنو مانگنا تو رکھا تو
کس طرح سے مانگا جاتا ہے؟
ستارہ وقت بہت نے لوگ ضلعے کی تحصیل ہاپڑ ویسے فیملی نے اسے 11 سے 12 تو سنگتی والوں کرسی اس میں درشن رکھتے ہیں, اتو بھی سنک نے درشن دے دیا. سال بچے 2-3 مہینے ڈیوٹی کے علاقے میں گھر رکھتے ہیں. 16 مہینوں میں ہاپڑ گئے کر کے میرٹھ مظفر نگر دہرادون غازی آباد شہر نے سنا بن کے کیرتن دیں گے. سویر کا ٹائم 200 پریمی کا کچھ ہے. ایک 26 سال کا نوجوان جی سردے کے کچے پتنگ پتنگ بنے داڑی بھی سفا مسلمان ٹائپ کا بنیا ہوا سی. خدر کا فتح پرانا محل ہے پریا کمیز نمسکار کر کے سر مار کے کھیلنے لگ گیا. مہا پرشا نے پوچھا بھائی تو کون؟ کہنے لگا مہاراج میرے وزن لے رہے ہو کے سنو. کہنے لگے ہم تو تین تیری بےنتی کل سنیں گی. دوسرے دن سے خاص پریمیوں کے پاس اس نے بلایا گیا. بہت سارا تپ سی اس میں پوچھا بھائی تو کون ہے؟ اس نے پھر پریمی کے بچ آ کے اپنی ساری داستان دسی. مہاراج میرا نام ہے سلیمان, میں شاہی قاضی ہوں. محمود گجنی دے پہلے حلے ناس اس نے 1000 سال ہو گیا. ایران دے علاقے وچ میں ہندوستان آیا. وہ تو ہندوستان کا حسن تے دولت لٹ کے واپس لیا گیا. میں سہارنپور کے پاس نگر کے نام نگر ٹھہر گیا. ابھی تک میری اسے مزور بنی ہے. پھر کہو شردالو کہو ان لوگوں دیا کام پوجن نہیں ہوئی. 70 سال کی آدمی بچ میں اس تھان سے زندگی بتیت کی تھی. نمازا پڑھتا روزے رکھتا پر بے پیڑا بے مرتدا سی. پور بجا کا جان سان دوشے ہندوؤں نے پسرے بسی کہ قتل کروایا. 70 سال کی آدمی کی میری موت ہو گئی. نگڑا ہونے کی شکل نمازا نے روزہ نے بھی سہتا نہیں کی تھی. کمرہ نے پیش کیا اجرائیل محت آئی جگائی عادت جو 5 فریش کے مسلمانی مت کے منع ہیں آپ ضرور کہہ دیں. ਗੁਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਛਕਣਾ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਪਾਰਾ ਕੀ ਪਾਪ ਨਿਕਲੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਾ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਪੂਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਥਾਂ ਦੇ ਭਟਨਾ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਭੁੱਖਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਮੁਗਲ ਖੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਲਿਆ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀਆਂ ਥਾਣਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਵਬਦ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾਂ ਦਰਾਈਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਬਿਜਾ ਦੇ ਮਾਵਰੀਆਂ ਪਾਸ ਲਗਾਏ ਪਰ ਜੋ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਲਗਾਈਏ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਰਸ਼ਕੀ ਆਸਰੀ ਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਚੰਗੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜਿੰਦ ਕਹਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੇਸਰ ਕਸੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਤ ਸੁਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇਗਾ ਨਜ਼ਾਰ ਮੁਕਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਰੇ ਜੁਨੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਬਗਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਡਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਕਈ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਝੁਗਤ ਦਿਖੇ ਤਨਮਾਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜੁਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਤੋਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਲ ਦੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਪਤੀਆਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਲਗਾਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਉਸਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਥ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੁਣੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਬੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਹਿਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਲਾਲਚਲਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਵੀ ਤੇਪਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਲੇਮਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ 5-8-60 ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋ ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਪ ਘਨੇਰੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜ ਭਾਗੀਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖ ਸੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਹੁਕਮ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਕਦੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਗਲਾ 80 ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੋ। ਕਿਰਤਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਕੀ ਰਹੀ, ਨਿਗਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਪਤ ਬਾਣੀ ਉਤਰੈ ਸਾਜ ਅਨੇਕ ਲਈ ਧਰਨੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੰਨਾ ਰੂਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਤੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ, ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਸਹੀਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।